सत्यार प्रकाश स्वामी दयानंद जी के द्वारा लिखित, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है लाइट ऑफ ट्रूथ, उसकी 7th चैप्टर हमने अभी शुरू किया है। आज उसकी दूसरा दिन है। पिछले बार हमने चर्चा सुनी थी, जैसे कि पहले भी बताया था, ये जो भारतीय वैदिक परंपरा रही है, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से, क्वेश्चन और आंसर, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के माध्यम से बातों को रखने की जो हमारी परंपरा रही है, शास्त्रार्थ परंपरा, उसी के अनुरूप ये उनकी स्टाइल है। पिछले बार ये प्रश्न उठाया था, क्या वेदों में अलग बहुत सारे देवताओं का चर्चा है? तो जैसे आपको बताया गया था कि नहीं, एक ही देवता की चर्चा है, परमात्मा की। जो अलग अलग देवताएं दिखते हैं, जिन अलग अलग देवताओं की चर्चा हमें पता लगता है, इसी प्रसंग में हमने चर्चा की थी कि जो हमारे यहां ईश्वर के लिए जो अलग अलग शब्द होते हैं, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, देवता, इन सबके जो अर्थों को न समझने के कारण समाज में ये गलत फहमियां, इस मिसपरसेप्शन बने। देवता का मतलब ईश्वर नहीं, जो भी जिनका भी दानाद वा, दीपनाद वा, द्योतनाद वा, द्युस्थानो भवति इति वा, जो कुछ, जो कोई हमें कुछ देता है, जिनका लाइफ में हमारे कुछ कंट्रीब्यूशन है, जो खुद शाइन करते हैं या दूसरों को शाइन कराते हैं, या आकाश में रहने वाले जितने सूर्य, नक्षत्र, तारे वगैरह हैं, वो सब देवता के समान देवता हैं। देवता का यही लिटरेरी मीनिंग है, और यही भाव सब जगह आता है। जो भी प्रकाशित करते हैं या कराते हैं, वो सब देवताएं हैं। इसीलिए हमारे यहां लाखों करोड़ों देवताएं होती हैं, मां बाप से लेकर के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़ पर्वत, सबको हम देवता मानते हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि हम इसको ईश्वर मानते हैं। ये इनका, जिनका भी हमारे जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट है, हम उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए एडोरेबल है, सम्मान के योग्य है। पर इसमें कोई गलतफहमी नहीं है कि वो ईश्वर है। ईश्वर एक है, जो सृष्टि करता है, प्रलय करता है, संहार करता है, समस्त संसार को पालता है, बनाता है, आपको और हमें बनाया, हमारे शरीर को बनाया, ये सिस्टम को बनाया, वो ईश्वर एक ही है। फिर चर्चा आई कि ईश्वर में, वेदों में और वैदिक शास्त्रों में जो 33 कोटि देवता का उल्लेख आता है, वो क्या चीज है? 33 मतलब 33 कोटि मतलब टाइप, 33 टाइप्स ऑफ देवताज। देवता का अनुवाद जब हम गॉड करते हैं तो वहीं से गड़बड़ियां शुरू होती है। और ये 33 कोटि भी बाद में, क्योंकि लोगों की पढ़ाई लिखाई कमजोर रहती है तो वो भी बिगड़ गई, अब वो कोटि की जगह करोड़ बन गए। पर वो 33 तरह के देवताएं हैं जिनकी चर्चा हम कल उस दिन कर रहे थे, शतपथ ब्राह्मण में, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें ये 32 तरह के देवताओं का डिस्क्रिप्शन है। अष्टवसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, इंद्र और प्रजापति। अष्टवसु की चर्चा भी हम कल कर चुके हैं, पिछले बार कर चुके हैं। वसु उनको कहते हैं जहां, जिसमें वसा जाता है, रहा जाता है, वस धातु से उष्यते इति वसु। और संसार में 8 तरह के ऐसे चीजें हैं जो पैसिवली और एक्टिवली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहने का जगह बनते हैं या बनाते हैं। उसमें जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, आप, जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु वगैरह वगैरह, और उसके अलावा चंद्र, चंद्र का अर्थ तो ये चांद नहीं है, कोई भी उपग्रह, ग्रह और उपग्रह, पृथ्वी मतलब ग्रह, और सूर्य, तारे, जो सोलर सिस्टम है, ये सारे अष्टवसु में गिने जाते हैं, ये देवताएं हैं। एकादश रुद्र की चर्चा कर रहे थे भी, थोड़ी बहुत यही हमने रुका था। रुद्र का अर्थ रुलाने वाला, जो रुलाता है। इवन हम जो पौराणिक देवता, जो देवताओं का कंसेप्ट जब बनने लगा, वैदिक देवता बदलते बदलते पौराणिक पुराण तक आते आते देवताओं का स्वरूप बदलने लगा, जब त्रिमूर्ति की अवधारणा, द परसेप्शन ऑफ त्रिनिटी के आया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये एक कोई हिंदू धर्म का कोई ऑथेंटिक या पुरानी कंसेप्ट नहीं है। ये जो त्रिमूर्ति की अवधारणा, ये एक पौराणिक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें ईश्वर की जो जो कार्यक्षमता है हमारे दर्शनों में, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, उसको माइथोलॉजिकल स्टोरी के माध्यम से तीन अलग अलग देवताओं के रूप में रखा गया कि एक सृष्टि करता है क्रिएटर जिसको आप ब्रह्मा कहते हैं, एक संपालन करने वाला है विष्णु जो और जो संहार करता है, जो विनाश करता है, जो संसार के प्रलय का विनाश का कारण होता है उसे हम शिव या शंकर कहते हैं। उसी शिव और शंकर का माइथोलॉजी में पौराणिक कथाओं में रुद्र भी उसी के लिए कहा जाता है, वो भी इसीलिए। रुद्र का मतलब होता है जो रुलाता है, शिव का मतलब होता है जो कल्याणकारी है। रुलाना और कल्याण करना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अच्छी चीजें जब भी होती है तो उसमें लोगों को परेशानी तो होती है, दर्द तो होता है, पर आफ्टरऑल ये बाद के लिए अच्छे होते हैं। अब एक्सरसाइज करते हैं तो दुख तो है, सर्दी में उठना पड़ता है, बारिश में दौड़ना पड़ता है, पर आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। फीका खाना खाना बड़ा मुश्किल होता है, जीव अलाउ नहीं करता है, पर शरीर के लिए अच्छा होता है। तो जो भी कभी कोई चीज शांतिकारक होता है, सुखदायक होता है, थोड़ा बहुत रुलाने वाला होता है, शिव इसीलिए रुद्र है क्योंकि वो संहार करता है। और जब विनाश करते हैं तो नेचुरली बहुत सारे लोगों को दर्द होगा और रोते हैं, पर वो तो हुई वेदों की देवताओं का जो पौराणिकीकरण, जो माइथोलॉजिशन जो हुआ। पर वेदों में जो रुद्र शब्द है उसका शिव से कोई लेन देन नहीं है आजकल के पौराणिक रुद्र के साथ। रुद्र का अर्थ रुलाने वाले, एकादश, तो 11 टाइप ऑफ रुद्राज। वो कौन है? आपके अंदर जो पांच महाप्राण है और पांच जो छोटे प्राण है, जो अल्प प्राण है, और जो आत्मा, ये 11 रुद्र हैं। क्यों ये रुलाते हैं? क्यों रुलाते हैं? जब ये शरीर से निकल जाते हैं तो सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब रोने लगते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन के साधन होते हैं। वो 10 प्राण कौन है? जो प्राण तो आप जो सांस लेते हो, प्राण का मतलब होते है जिसको आप सांस लेते हो, प्राण है वो। बाहरी दुनिया में जो एटमोस्फियर का जो हवा है, एयर है, जैसे ही अंदर जाता है वो अलग अलग फंक्शन करने लगता है, तो उसके अलग अलग नाम होने लगते हैं। उसमें से सबसे पहले प्राण है। प्राण जिसको आप सांस लेते हैं, ये आपके नॉस्ट्राइल से हार्ट की ओर जो फ्लो करता है, इट फ्लोज फ्रॉम नॉस्ट्राइल टू द हार्ट, और यही आपके जो आत्मा का जो मैनिफेस्टेशन है, ये उसका माध्यम है, द मीन ऑफ द सोल्स मैनिफेस्टेशन, ये प्राण। इसी के होने या ना होने पर व्यक्ति का मरना, जिंदा रहना निर्धारित होता है, जिसे हम प्राण कहते हैं। और इसका स्थान जो प्लेस है वो नाक से लेकर हृदय तक या फ्रॉम नोस्ट्राइल टू हार्ट तक होता है। अगला जिसको हम कहते हैं अपाना, ये ठीक इसका अपोजिट है, ये हमेशा इट फ्लोज टू डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर बहता है। और इसका जो स्थान है वो आपके जो लोअर इंस्टेंटाइन्स है, ये उसका स्थान है, और नेविल से, नाभि से लेकर पैर की ओर इसका जगह होता है। इट ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड्स, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर यूरिनेशन, डिफिकेशन एंड इजैक्युएशन। जितने भी हम बाहर चीजें निकालते हैं उन सब का जो कारण है, जो प्रेशर है, वो जिस वायु के कारण जिस प्रेशर को होता है उसे हम अपाना कहते हैं। और ये एक तरह का आपके पूरे शरीर को क्लींस करने के लिए, सफाई करने का साधन होता है। अगला जो पंच प्राणों में से जो तीसरा प्राण जो है उसे समान कहते हैं। वही वायु जो सांस लेते हैं वो अलग अलग जगह जब अलग अलग फंक्शन करता है। समान वायु उसको कहते हैं जो आपके पेट में होता है, जो अब्डोमेन में रहता है, अब्डोमेन में नाभि के साथ, और वो आपके जो पाकस्थली है, जो जहां आपका खाना पकता है उस खाना को पकाने में वो हेल्प करता है। और जो खाना आप जो कुछ खाना खाते हैं पीते हैं वो जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है एसिड के साथ, उस एनर्जी को अलग अलग जगह पूरे शरीर में पहुंचाने का काम जिस एयर प्रेशर के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है, वाइटल एयर के द्वारा, उसे हम समान कहते हैं। इसका काम है कि पूरे शरीर में जो कुछ आपने खाया उसको जो वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद उसको अलग अलग जगह भेजने का काम करता है। जो चौथा प्राण वायु है उसे हम व्यान कहते हैं। व्यान का मतलब होता है जो पूरे शरीर में फैला हुआ है, और ये इट फ्लोज थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। जितने भी आपके नर्व्स हैं, नर्व चैनल हैं, हर जगह आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन होता है, पूरे बॉडी में जो कुछ भी नर्व्स के थ्रू आपके सर्कुलेट होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ दिस एयर, इट इज कॉल्ड द व्याना। तो पूरे शरीर में आपकी एनर्जी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन, जो कुछ भी होता है, ये जिस वायु के द्वारा होता है उसे हम व्यान कहते हैं। व्यान का मतलब यह है कि जो जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। और जो पांचवा है उसके हम कहते हैं उदान। उदान का मतलब होता है इट फ्लोज, जो जो डिसेंडिंग, जो एक्सेंडिंग एनर्जी है, जो ऊपर की ओर फ्लो करता है, ये इट फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू हेड। आप देखते हैं बचपन में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके यहाँ एक छेद सा, एक बिल्कुल सॉफ्ट एरिया होता है, और वहां से ले, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और उसके वहां से लेकर आपके हृदय तक एक जो नर्व है जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, योगी लोग कहते हैं, और ये जो वायु उसमें रहता है, ये हमारे जो बुद्धि को, मेमोरी को, जो ब्रेन से रिलेटेड काम है उसके वो फंक्शन करता है। और जो योगी लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उनकी आत्मा की, जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा किसी ना किसी होल के द्वारा बाहर निकलता है, वो रोम के छेद हो, रोए के छेद हो, या आंख कान कुछ भी हो। कहते हैं कि योगियों का जो आत्मा है वो इस ब्रह्मरंध्र से उदान वायु के द्वारा निकलता है। तो ये जो पांच तरह के वायु हमारे शरीर में फंक्शन करते हैं, और फिर उनके जो सबोर्डिनेट बाकी जो प्राण है वो, जिसको आप नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय के नाम से बाकी पांच वायु हैं। तो ये दस चीजें को रुद्र क्यों कहा? क्योंकि ये रुलाते हैं। रुलाते हैं कब? जब ये कमजोर पड़ते हैं, जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो पूरे शरीर में दर्द होता है। पड़ोसी, आस पड़ोसी, बंधु बांधव, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे सब रोने लगते हैं, इसीलिए इसको रुद्र कहा। और ग्यारहवां जो रुलाने वाला है कि आपकी हमारी जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा जब बाहर जाती है तो रुलाती है लोगों को, इसीलिए ग्यारह रुद्र है। दे आर कॉल्ड रुद्र बिकॉज वेन दे लीव द बॉडी एट द टाइम ऑफ डे दे मेक पीपल वीप। अगला जो 32 तरह के देवताओं में से अगला है 12 आदित्य, 12 आदित्याज। आदित्य जो माइथोलॉजी में, पुराणों में आते आते आदित्य सूर्य बन गया, जो सन है, और 12 वो 12 के उसके 12 घोड़े की कल्पना, क्योंकि माइथोलॉजी में हर किसी को एक ह्यूमन बींग के रूप में देखा जाने की परंपरा है। आदित्य शब्द का अर्थ होता है आदत्त रसान, इति आदत्त रस, जो रसों को खींच लेता है, जो प्राण को खींच लेता है या प्राणों को देता है, बोध दत्ते रसान, आदत्य रसान, वा दोनों तरह के आदित्य है। सूर्य का भी एक नाम आदित्य है, क्योंकि सूर्य के उगने पर, सूर्य के कारण संसार में जितने भी भीगे हुए चीज हैं, जो लिक्विडिटी है, जो कुछ है, वो सब उसको खींच लेता है, सुखा देता है, और उस सूर्य के कारण प्राण भी होता है। ये जो 12 आदित्य, क्योंकि 12 तरह के जो महीने हैं, द 12 मंथ्स आर कॉल्ड 12 आदित्याज। ये महीने को क्यों आदित्य कहा गया? क्योंकि महीने होते हैं जो आपके जीवन को खींचते रहते हैं। जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, कि आज 12वां हुआ, आज 58th एनिवर्सरी है, आज 60th बर्थडे है, आज 16th बर्थडे है, तो वो 16 साल आपके जीवन को घटा चुका है, या 20 साल घटा चुका है। जितने एक एक हर एक एक महीने से 12 महीने बनते हैं, ये हर महीने आपके जीवन के रस को सोखता रहता है, इसीलिए इनको द्वादश आदित्य कहते हैं। द 12 मंथ्स ऑफ ईयर आर कॉल्ड आदित्याज एज दे कॉज द लैप्स ऑफ टर्म ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट और बींग। जैसे ही आप पैदा होते हैं, हर महीने आपकी जीवन की जो आयु की मात्रा है वो घटती जाती है। मान लीजिए आप 100 साल के लिए हैं, आप 50 ईयर्स ओल्ड हैं, तो इसका मतलब आपके 50 साल घट चुके हैं। 16 साल के हैं तो 16 साल आपका घट चुका है। बाकी उसके बाद इंद्र वो अंग्रेजी में तो इलेक्ट्रिसिटी, जिद आपको पता है पुराणों में इंद्र शब्द, इंद्र किसकी देवता है? बादल की, बारिश की, द गॉड ऑफ क्लाउड एंड रेन। क्योंकि जब बादल, वो जो बादल की देवता, अच्छा इंद्र का अस्त्र क्या होता है? वज्र होता है, थंडर पुराणों में। जो वैदिक देवताएं हैं वो पुराणों में आते आते बिल्कुल एक ह्यूमन बींग का नेचर ले लेते हैं। इंद्र उस एनर्जी का नाम है, जो इलेक्ट्रिसिटी का नाम है, जो संसार में हर जगह आपके शरीर से लेकर के जड़ में चित्त हर जगह जो समाया हुआ है, जिसके कारण फंक्शन होता है संसार में, एक्टिविटीज होती है, वो जो समस्त संसार में समाई हुई जो शक्ति है, जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसी को इंद्र कहते हैं। इंद्र का रियल मीनिंग, जो लिटरेरी मीनिंग है, जो ऐश्वर्यकारी है, जो ऐश्वर्य देने वाला है, तो ऐसे जो विद्युत शक्ति है, जो एनर्जी है, वो एक देवता है। आगे है प्रजापति। प्रजापति का रियल मीनिंग है द क्रिएटर, जो प्रजाओं का, जो भी संसार में पैदा हुआ है, वो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जो भी इंसान, वो सब प्रजा है। प्रकर्षेण जायन्ते इति प्रजा, जो कुछ भी पैदा होता है वो सब प्रजा, उसका स्वामी, उसको बनाने वाला प्रजापति परमेश्वर है। पर पुराणों में प्रजापति फिर ब्रह्मा क्योंकि क्रिएटर बना, तो प्रजापति कहानी उसी के साथ जुड़ गई। शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं यज्ञ इज प्रजापति, यज्ञ इज कॉल्ड प्रजापति बिकॉज इट बेनिफिट्स मैनकाइंड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर वाटर रेन एंड वेजिटेबल्स एंड बिकॉज इट एड्स द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट्स एंड बिकॉज इन इट द ऑनर इज अकॉर्डेड टू द लर्नड एंड द वाइज। इसको समझने के लिए यज्ञ की जो प्राचीन काल की व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको समझना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो आजकल नहीं, ये तो सब कुछ हमारे यहां बदलने लगा। ये नई हिंदुइज्म में ये ट्रेंड बना, यज्ञ करने से आपके बच्चा पैदा हो जाएगा, आपकी वो हो जाएगा, आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। हम तो सब कुछ अब कुछ फायदे के चक्कर में करते हैं। हमारे लिए भगवान का भी उतना ही मतलब रह गया जितना कि उससे हमें फायदा मिल जाए, नहीं तो यूजलेस है हमारे लिए। हमारे लिए तो बाकी बहुत सारा काम पड़ा है, डॉलर से लेकर के और बहुत सारे काम पड़ा है। तो ईश्वर से जुड़ने का मोस्ट ऑफ पीपल, जो मॉडर्न कंसेप्ट दुनिया में फैला है, अब सभी रिलीजन में ये फैला है, तो वो रह गया सिर्फ कुछ जो हमारे इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, इसी से रह गया। यज्ञ का जो वास्तविक जो व्यवस्था थी, जो प्राचीन काल में जब हिंदू धर्म में ये मूर्ति पूजा का कंसेप्ट शुरू नहीं हुआ था, इस तरह के मंदिरों का कंसेप्ट, सेक्ट, इतने तरह के सेक्ट तो थे ही नहीं जिसको आप प्योर वेद उपनिषद काल के देखते हैं। इवन उन दिनों जो कर्मकांडों के किताबें भी होती है वो सिर्फ यज्ञ के अलावा कुछ नहीं। तो हर चीज में यज्ञ होता था, हर घर में सुबह शाम से लेकर के हर त्योहार में, उत्सव में, फंक्शन में, सेरेमनी में यज्ञ होता था। पर उसके बैकग्राउंड जो था, क्यों करने की परंपरा थी, क्योंकि यज्ञ को अगर सही विधि से किया जाए, सही मात्रा में घी और उसके साथ जो एक खास तरह के सामग्री बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, अलग अलग टाइप के जो हर्बल्स के जो जड़ी बूटियां हैं, जो सुगंधित हैं, अलग अलग टाइप के खास तरह के उसके पैरामीटर हैं, उसके हिसाब से सामग्री बनाई जाती थी, उनके द्वारा आहुति देने के साथ वायुमंडल में शुद्धता आती है। जो इंसान स्वाभाविक रूप से जो गंदगी फैलाता है, ये पॉल्यूशन तो हमने आर्टिफिशियल है, नेचुरली भी हम वैसे ही संसार में बहुत पॉल्यूशन फैलाते हैं। हम तो आज का जो पॉल्यूशन है वो तो इंसान की भयंकर लालच और भयंकर एरोगेंसी, जो घमंड कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हैं, हम दुनिया में कुछ भी खोज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये जो एरोगेंसी ऑफ नॉलेज और दूसरा जो ग्रीड है, जो लालच है, जिसके कारण ये जो आर्टिफिशियल वे से जो हमने दुनिया को पल्यूट किया वो अलग बात है, पर नेचुरली भी हम संसार को पल्यूट करते रहते हैं, क्योंकि जो हम खाते हैं पीते हैं तो हमारे शरीर से जो कुछ निकलता है उससे भी संसार पल्यूट होता है। जब वो पूरा संसार में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं था, ये टेक्नोलॉजी के कारण जो समाज में पल्यूशन आया वो नहीं था, उस समय भी ऋषि मुनियों की कल्पना थी कि जो हम लोग संसार में जो भी एक नेचुरल वे से हम गंदा करते हैं उसको सफाई रखने के लिए, उसका जो रिपेंट करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ करना होता था, जिससे वायुमंडल शुद्ध हो। जो गंदगी फैलाते हैं उसके सब्स्टिट्यूट में हम वायुमंडल में वो शुद्धता को फैलाए, वो सुगंधित को फैलाए, जिसके कारण मौसम का जो साइकिल है, जो साइकिल ऑफ मानसून है, वो ठीक रहे, वायुमंडल शुद्ध रहे। और इसके लिए और वो वायुमंडल शुद्ध होगा, पानी शुद्ध होगा, तो आपके अनाज खाने पीने इनकी भी शुद्धता बनी रहेगी। इसके साथ और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो स्वामी जी लिखते हैं, डेवलपमेंट वेरियस आर्ट्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यज्ञ के साथ आर्ट का क्या रिलेशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट का। अगर आप थोड़ी बहुत प्राचीन भारतीय धर्मों को, हिंदू धर्म को पढ़ने लगे, आप थोड़ा प्री बुद्ध जाइए वा प्री जैन जाइए, जो हिंदू धर्म का जो कंसेप्ट आप देखेंगे, जब ये यज्ञों की परंपरा थी, हर माहौल में यज्ञ थी, तो दिन भर कभी कभी दिन भर यज्ञ चलते रहते हैं। जितने भी हमारे यहां आर्ट और क्राफ्ट बने, वो म्यूजिक हो, वो ड्रामा हो, डांस हो, जितने तरह के म्यूजिक हैं, जो 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 आर्ट्स हैं, वो सारे आर्ट, इवन जो जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो सब रिलीजन के आसपास, धर्म के आसपास पनपते थे, यज्ञशाला के आसपास पनपते थे। इवन जो ज्योमेट्री आज दुनिया में, आज आप लोगों को ज्योमेट्री और ट्रिकोनोमेट्री करते हो, पाइथागोरस की फॉर्मूला माना जाता है, वो उस वैदिक यज्ञ परंपरा का कंट्रीब्यूशन है। जब प्राचीन काल में हजारों तरह के यज्ञ होते थे और उसके लिए अलग अलग टाइप के वेदियां, ये जो यज्ञ के जो अल्टर्स है, जो हवन कुंड बनाया जाता था, वो ट्रायंगल है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, 50 तरह के बनाए जाते थे, और उसकी नापने नाप मेजरमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती थी, उसके लेबल भी छोटा से बड़ा आकार में होता था, और यहीं से ज्योमेट्री का पैदा हुआ। अगर आप कभी वैदिक साहित्य का हिस्ट्री भी पढ़ें, द हिस्ट्री ऑफ वैदिक लिटरेचर, अब तो शास्त्र तो क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ स्क्रिप्ट, हिंदू स्क्रिप्चर भी पढ़ ले तो भी बड़ी बात है, तो आप देखेंगे उसमें एक सूत्र, श्रौत ग्रंथों की परंपरा है, इसमें शून्य सूत्र है, वो शून्य सूत्र ट्रिपिकली सिर्फ ये अलजेब्रा आपकी ज्योमेट्री और ट्रिकोनोमेट्री से भरा हुआ है। तो पर इसका उद्भव कहां से हुआ, क्यों हुआ, यज्ञ करने के लिए ट्रिकोनोमेट्री और ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। तो हमारे जो जितने तरह के टेक्नोलॉजी भी, साइंस भी, आर्ट भी बने, वो उस यज्ञ के आसपास बने, क्योंकि दिन भर यज्ञ होता था, महीनों तक चलता था, जब बड़े बड़े फंक्शन होते थे तो दिन में सुबह शाम यज्ञ चलता है, और रात को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता था, उसमें नाच, आजकल के वो आइटम गर्ल संग नहीं होता था, जैसे आप गणेश पंडाल में अब या दुर्गा पंडाल में भारत में आपको आजकल देखने को मिलता है, आइटम संग गाते हैं, मंदिर में भी वो शुरू हो गया है। तो ये जो क्लासिकल जो सिंग्स, जो क्लासिकल गाना जो शुरू हुआ, क्लासिकल म्यूजिक जो शुरू हुआ, वो उसी यज्ञ के परंपरा में, इवन जो नाटक है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, हजारों पेजों का, हजार, इसमें आपके एक्टिंग से लेकर, डांस फॉर्मूला से, फॉर्मेट से लेकर के, इवन जब आप डांस करते हैं व एक्ट करते हैं, जो आप फिल्मों में जो भी एक्ट करते हैं, उस एक्टिंग करने के लिए भी जो आपके अलग अलग इमोशन में, आपके आंखों की कैसी मुद्राएं होनी चाहिए, हाथों का क्या पोस्चर होना चाहिए, आपके मुंह का क्या पोस्चर होना चाहिए, आप गुस्से में कैसे आंख करें, आप हंसी पर कैसे करें, आप रोमांस मूड में है तो कैसे आंख करें, आप फ्रस्ट्रेशन में, ये जो बारीकी से जिसको आजकल आप मॉडर्न एक्टिंग स्कूल में आप सीखते हैं, वो सब आपके प्राचीन काल में और आज से 3000-4000 साल पहले लिखे गए शास्त्र में है। और वो सारे क्यों है, क्योंकि यज्ञ के आसपास नाटक की, नृत्य की, डांस की, संगीत की, सब तरह की परंपराएं होती थी, रात को ये चलता था। तो भारत में जो कुछ एंशियंट आर्ट, क्राफ्ट, साइंस पनपा, वो ये उस यज्ञ के चारों तरफ, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कारण था यज्ञ परंपरा। इसीलिए यज्ञों का प्राचीन काल में इतना बड़ा महत्व था कि सारे वैदिक शास्त्र कहते थे यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, इट इज द मोस्ट एक्सलेंट वर्क ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार में अगर कोई सबसे उत्तम कार्य है वो यज्ञ करने की परंपरा थी। इसीलिए यज्ञों को प्रजापति से जोड़ा गया, क्योंकि हर तरह के जो जो क्रिएटिविटी है, जो इंसानी क्रिएटिविटी है, परमात्मा सृष्टि करता है संसार का, पर इंसान के अंदर जो क्रिएटिविटी, वो जो क्रिएट करता है, वो उन दिनों यज्ञ के कारण हुआ था, इसीलिए यज्ञ को भी प्रजापति कहा। तो इस तरह ये 32 तरह की जो देवताएं बनी, 8 वसु और 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, ये सारे मिला के 32। देयर आर 32 टाइप्स ऑफ देवताज, डोंट ट्रांसलेट इट एज गॉड्स, यहीं से कंफ्यूजन होता है। और अंग्रेज जो विदेशी लोगों को भी यहीं से कंफ्यूजन है कि हिंदुओं में बहुत सारे तरह के देवता है, विदेशियों को तो छोड़िए, हम कौन से दूध के धुले हुए हैं। तो मैं स्कूल में एक बार गया, अपने स्कूल में ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 100-150 हर क्लास में पूछा कि बताओ ईश्वर कहां रहता है, सब हिंदू बच्चे हैं, तो सबने बोला ईश्वर हेवन में रहता है, ईश्वर लिव्स इन हेवन, ईश्वर लिव्स इन इन स्काई। अरे हिंदू बच्चे हैं, ईश्वर आकाश में रहता है, हेवन में रहता है, अब्राहमिक कंसेप्ट है, इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी कंसेप्ट है, पर कोई हिंदू बच्चा नहीं जानता। हिंदू बच्चा नहीं जानता क्योंकि हिंदू पेरेंट्स को पता है ना, बच्चा कहां से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, इट इज एवरीवेयर। ये छोटा सा कंसेप्ट भी हम बच्चे को नहीं देते, ट्रेडिशनली हजार हजार साल से यही सिखाते आ रहे। आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, पर आपके मां बाप ने आपको सिखाया, आपके आपने अपने बच्चों को सिखाते हो। दिस वे यू लर्न एवरीथिंग। तो ये थोड़ी बहुत सावधानी की जरूरत है। और परमात्मा बिंग लॉर्ड ऑफ ऑल एंड ग्रेटर देन ऑल द सुप्रीम बींग इज कॉल्ड द 34th देवता एलॉन इज टू बी वर्शिप। परमात्मा सबके देवताओं का भी देवता है, तो वो 34वां, तो आप इसको 34th कह सकते। जो कुछ आप एडजेक्टिव से यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वो सब परमात्मा में, ईश्वर में फिट होता है। अगर आप कहते हैं कि ये पिता है, ये मेरा फादर है, पिता है, तो परमात्मा भी पिता है। पिता इसीलिए कि वो पालन करता है, तो परमात्मा भी पिता है क्योंकि वो सबका पालन करता है। आप कहते हैं ये मां है, तो परमात्मा भी मां है क्योंकि मां सबको देखभाल करती है बच्चों की, तो परमात्मा भी सबकी देखभाल करती है। आप कहते हैं ये सूरज है, द सन, सूर्य इसीलिए कि वो सबको प्रकाश देता है, परमात्मा भी सूर्य को प्रकाश देता है। तो संसार में आप किसी को कोई भी एडजेक्टिव दीजिए, वो सारे एडजेक्टिव परमात्मा में भी फिट बैठता है। जब आप कहते हैं देवता, देवता मतलब देने वाला या शाइन करने वाला, तो परमात्मा भी देवता बहुत कुछ देता है। तो परमात्मा हमेशा जो जो जैसा भी है उससे ऊपर है। हम राजाओं को भी ईश्वर कहते थे, तो परमात्मा परमेश्वर है। इवन हम परमात्मा को भी राजा बोलते हैं क्योंकि वो सबको शासन करता है। तो ईश्वर के लिए आप कोई भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं जो आप अपने रिलेटिव्स में, सोसाइटी में यूज करते हैं, और ऐसा करते भी हैं। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण, ये जो अपने 14th चैप्टर में इसका रेफरेंस है, 14th चैप्टर ऑफ शतपथ ब्राह्मण में, और बाकी और भी शास्त्रों में ये वैद्य जो 32 टाइप्स ऑफ द्वात्रिंशत कोटि देवता का वर्णन है। हैड पीपल कंसल्टेड दिस बुक्स, दे वुड नॉट हैव फॉलन इनटू दिस एरर, सच एज द बिलीव दैट देयर इज पॉलीथेइज्म मेंशनड इन द वेदास। अगर थोड़े बहुत भी हमारे मां बाप या हम पेरेंट्स, आज पेरेंट्स इवन आपके पंडित लोग जो मंदिर में पूजा पाठ कर, जहां से आपको ये सोर्स मिलता है, थोड़े बहुत भी पढ़ लिख लेते धर्मशास्त्रों को व धार्मिक शास्त्रों को, तो ये इस कम्युनिटी का बड़ा मंगल हो जाता। तो इस तरह के लज्जास्पद चीजों में वो फंसे नहीं होते। लज्जास्पद इसीलिए कि जो आप नहीं हो उसको आप प्रोपागेट करते हो, जो आप हो वो आपको जानते नहीं हो और बताते नहीं हो। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है, यू रिपीट द नेम्स ऑफ गॉड सो ऑफन, बट हाउ कैन यू प्रूव हिज एग्जिस्टेंस। खैर इट्स ए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इसका कोई वैदिक धर्म से कोई जरूरी नहीं कि वैदिक धर्म से लेन देन हो। दुनिया में जो भी ईश्वर को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, उनके बीच में सवाल जवाब है। जो नहीं मानता वही सवाल पूछता है कि आप ईश्वर को मानते हो तो हाउ कैन यू प्रूव इट इट्स एग्जिस्टेंस, कैसे आप प्रूव करोगे कि वो एग्जिस्ट करता है। ईश्वर को रियलाइज करना इज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग, बट उस पर उसको प्रूफ कराना इट्स डिफिकल्ट थिंग। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, बाय द एविडेंस ऑफ डायरेक्ट कग्नाइशन परसेप्शन अदर एविडेंसेस। हमारे यहां किसी भी बात को रखने के लिए, खास करके हमारे दर्शन शास्त्रों में, फिलोसॉफिकल स्क्रिप्चर्स में, तो जो जो कग्नाइशन के, ज्ञान के अलग अलग एविडेंस को मानने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। कुछ शास्त्र 4 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं, कुछ 8, मैक्सिमम 8 है और मिनिमम 1 है। भारत में जो नास्तिकवादी हैं, मतलब नास्तिक मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैसे चार्वाक है, वो एक ही प्रमाण मानता है। प्रमाण मतलब मीन ऑफ कग्नाइशन, जानने की तरीका, और दैट इज प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट कग्नाइशन और परसेप्शन, जो आप अपने इंद्रियों से, आंख कान नाक से जाना,
वही ज्ञान है। अगर आंख से आप कोई चीज देख नहीं पाते हो, कान से सुन नहीं पाते हो, जीभ से चख नहीं पाते हो, आपको पता है ना पांच इंद्रियां कौन से, जीभ से आप टेस्ट करते हो, बहुत सारी चीजें आप देखकर जान जाते हो, और बहुत सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देता, आप सुन के जानते हो, जैसे शब्द है, आप प्रवचन सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, ये आप सुन के जानते हैं। बहुत सारी चीजों को सिर्फ आपको सुनकर ही जान सकते हैं जो स्मेल है, बहुत सारी चीजों को आप सिर्फ चखने पर ही जान सकते हैं वो टेस्ट है। कितना भी बढ़िया खाना बना हुआ हो, अगर आपका जीभ खराब है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो खाना स्वाद है कि नहीं है। कितना भी घर में कोई कितना परफ्यूम फैला रखा हो शरीर में, अगर आपको जुकाम है, आपके नाक बंद है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि परफ्यूम किस तरह का परफ्यूम है। तो और एक चर्म है, स्किन है, जो टच करने से बहुत सारी चीजों का पता लगता है। तो इस तरह के जो हमारे पांच इंद्रियां हैं, इन पांच इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वही केवल ज्ञान है। ऐसे बहुत सारे लोग प्राचीन काल में भी मानते हैं और आज भी मानते हैं, जिसको हम नास्तिक कहते हैं चार्वाक वर्ग में। और इन्फ्लुएंस, पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की, जैसे अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण के लिए जब दो वस्तुओं का रिलेशनशिप प्रूफ हो जाए, व्हेन इट इज प्रूफ्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, और वो जो रिलेशनशिप प्रूफ्ड रिलेशनशिप के आधार के ज्ञान पर जब आप उनमें से किसी एक को देखते हो तो दूसरे का आप इन्फ्लुएंस करते हो। जैसे अगर उजाला है तो इसका मतलब कोई लाइट जल रहा है, वो लाइट सूर्य हो सकता है, वो आपके घर के इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकते हैं या टॉर्च हो सकता है। अगर ठंड है तो टेम्परेचर कम हुआ है, अगर गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ा है, तो आपको हमेशा जाकर के देखने की जरूरत नहीं कि टेम्परेचर घटा या बढ़ा है। अगर ठंड लग रहा है तो टेम्परेचर घटा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा जब भी आपको ठंड लगे तो टेम्परेचर एटमोस्फेयर में घटा होगा। आपके अंदर से भी बीमारी हो सकती है, पर यह एक्सेप्शन है। अगर हम किसी को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को जानते हैं, वो कोई भी लिविंग बींग हो, कोई भी प्राणी हो, तो हम जानते हैं कि इसका कोई ना कोई मां या कोई ना कोई पिताजी होंगे। वो हमें पता ना हो कि उसके पिताजी कौन है, उसकी मां कौन है, उसके पापा कौन है, मां कौन है, पर ये पक्का है कि उसके कोई मां बाप होंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप प्रूव्ड है कि बिना मां बाप के कोई बच्चा नहीं होता है। वो डायरेक्ट फादर हो या इनडायरेक्ट हो, वो टेक्स्ट ट्यूब के द्वारा बच्चा पैदा हो या इंजेक्शन के द्वारा पैदा हुआ हो, तो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्टली हो, उसका कोई ना कोई मां बाप होगा जिसके जिसके रजोवीर्य से संतान पैदा हुआ है। तो इसको हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। कोई भी कार्य आप देखते हैं, कुछ भी आप देखते हैं संसार में, आपके घर में कोई भी सामान है, जितने भी सामान है, इसको बनाने वाला जरूर कोई होता है। आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में अलमीरा है, आपके घर में कपड़े हैं, आप जो कुछ भी है, जो कुछ भी बना हुआ चीज है, व्हाट इज मेड, उसको मेकर, देयर शुड बी समवन हु इज मेकर, उसको कोई बनाने वाला जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि किसी के बनाए बिना कोई चीज बन जाता है। तो अगर कोई बना हुआ चीज है, उसको जरूर किसी ने बनाया होगा, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्टली हो, कोई बनाने वाला होगा, इसको इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रमाण होते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं किसी भी प्रमाण से आप ईश्वर को भी प्रूव कर सकते हो, पर यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, किसी भी प्रमाण से ईश्वर को प्रूव करना मुश्किल काम है। क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन तो आपके हमारे मन से भी आ सकता है, बट परसेप्शन एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस वगैरह जो भी मीन्स ऑफ कॉग्निशन है, आर नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द गॉड। ईश्वर को जानने के लिए प्रत्यक्ष कैसे कारण, प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शन या डायरेक्ट कॉग्निशन का मतलब होता है जब हम इंद्रियों के द्वारा किसी चीज को जानते हैं। ईश्वर को हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम चख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम छू नहीं सकते, ये जानेंगे कैसे? तो ईश्वर प्रत्यक्ष से परे है। दुनिया में ज्यादातर विद्वान ज्ञानी लोग यही कहते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा नहीं मिल सकता, पर स्वामी जी कहते हैं नहीं, प्रत्यक्ष के द्वारा भी अनुभव हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन जिसको हमारे यहां प्रत्यक्ष कहते हैं, डायरेक्ट कॉग्निशन, वो प्रत्यक्ष क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन है न्याय दर्शन में। ये न्याय दर्शन ऑफ गौतम ऋषि जो सिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारे यहां, सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी, वन ऑफ देम इज न्याय दर्शन रिटन बाय गौतम ऋषि। गौतम बुद्ध इज डिफरेंट, गौतम ऋषि ऑफ न्याय दर्शन इज डिफरेंट। तो उसका डिस्क्रिप्शन देते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यवचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। द नॉलेज विच इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ द सेंसेस, जो आपके पांच तरह के सेंसेस है, ये पांच सेंसेस जब अपने अपने ऑब्जेक्ट को के साथ कनेक्टेड होते हैं, आंख देख सकता है जो देखने लायक चीज है, जब वो उसके साथ कनेक्ट होता है, मान लीजिए एक पेड़ है और आपके आंखें हैं, पेड़ के होने पर भी आपको पेड़ दिखाई नहीं देगा, आपके आंखें होने पर भी पेड़ दिखाई नहीं देगा, अगर पेड़ और आंखों के बीच में कनेक्शन ना हो, एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो। आंख और पेड़ के साथ जब कनेक्शन होता है तभी आपको प्रत्यक्ष होता है, पर उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। आंख हो तो भी पेड़ नहीं दिखाई देगा अगर पेड़ आसपास ना हो, पेड़ हो तो भी आपको दिखाई नहीं देगा अगर आपकी आंखें ना हो, आंख पेड़ दोनों हो तो भी नहीं दिखाई देगा अगर कनेक्शन ना हो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप ना हो। अब रिलेशनशिप हो जाए तो भी आपको दिखाई नहीं देगा अगर आपका माइंड आपके आंख के साथ कनेक्टेड ना हो। अगर उस समय आपका माइंड आपके ऑफिस के बारे में सोच रहा है, आपके घर के बारे में सोच रहा है, आपके आर्य समाज के बारे में सोच रहा है, या किसी चीज के बारे में सोच रहा है, हो सकता है आपकी आंख पेड़ पर हो पर आपको पेड़ नहीं दिखाई देता है। कभी कभी आप रास्ते में चलते हैं, सामने सैकड़ों लोग जाते हैं, आपके किसी किसी को दिखेगा कि आप किसी को देख रहे हो, पर आपको पूछा गया आप किसी को देख रहे हो, आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके मन में कुछ चल रहा है, आपका माइंड और कहीं कनेक्टेड है। तो माइंड जो है इंद्रियों से कनेक्टेड होता है सेंसेस से, और सेंसेस जब ऑब्जेक्ट वस्तु से कनेक्टेड होते हैं तब जाकर के आपको प्रत्यक्ष होता है। ये एक सिंपल फॉर्मूला है प्रत्यक्ष ज्ञान का, और वो भी एरर फ्री होना चाहिए, डाउट फ्री होना चाहिए, वो एक अलग बात है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें ईश्वर की सिद्धि के लिए जो छोटी सी चाहिए, एक दो मिनट में इस बात को रखते हैं। अब आते हैं असली जो जो हम बताना चाहते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा ईश्वर को हम कैसे जानेंगे। नाउ लेट अस नोट दैट इट इज ओनली एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी नोन थ्रू द सेंसेस। बट इंटरेस्टिंग चीज है, जब आप कहते हैं कि मैं आपको देखा हूं, देखता हूं, मैं जानता हूं, आप मेरा क्या चीज देखते हो? मेरे बैक साइड को आप नहीं देख पाते हो, मेरे शरीर के 95% जो है कपड़ों से ढका हुआ है, मेरे हाथ सिर्फ इतना निकला हुआ है, मेरा मुंह निकला भी चश्मा से ढका हुआ है, तो आप मेरी कितनी चीज देखते हो? स्टिल यू आर सेइंग दैट आई एम सीइंग यू, आई एम नोइंग यू। हम सिर्फ जिस भी वस्तु को हम देखने का दावा करते हैं, जानने की दावा करते हैं, हम उसके एट्रीब्यूट्स को जानते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि अमुक व्यक्ति कैसा है तो आप क्या बताओगे कि ये 5 फुट 6 फुट लंबा है, इतना चौड़ा है, वो इस तरह का उसका माइंड ऐसा है, वो इस तरह बोलता है, ऐसे करता है, जो कुछ आपने बोला वो क्या बोला? यू आर जस्ट डिस्क्राइब अबाउट इट्स एट्रीब्यूट्स, इट्स क्वालिटीज। आप सिर्फ क्वालिटी को ही देख सकते हो, आप सिर्फ एट्रीब्यूट्स को ही देख सकते हो, पर जिसके पास वो क्वालिटी है आप उसको नहीं देख सकते हो। आप जब पेड़ को देखते हो, आप पेड़ के कितने हिस्से, कितना पार्ट आप देखते हो? मे बी 5% 10%। आप उसके अंदर नहीं जानते हो, वो जमीन के अंदर जो उसका रूट्स गया उसको आप नहीं समझते हो, उस ग्रीन की ग्रीनरी के पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, उसको आप नहीं जानते, जो कॉज है आप कुछ नहीं जानते हो, तब भी आप कहते हो मैं पेड़ को देखता हूं। इसका मतलब है प्रत्यक्ष सिर्फ एट्रीब्यूट से, क्वालिटी से जाना जाता है, न कि पर्सन को देखा जाता है कभी भी। जब आप एट्रीब्यूट देख करके दावा करते हो कि मैं व्यक्ति को जानता हूं, यू डोंट सी द इंडिविजुअल, यू सी द क्वालिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, and then you recognize that oh that individual is like this। ये जो लाइफ दिस है वो सिर्फ उसकी क्वालिटीज हैं। तो क्वालिटी देख करके अगर आप ईश्वर की, तो आप संसार की व वस्तुओं का ज्ञान करते हो, इसी तरह सिमिलरली वी आर कॉग्नाइजेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बाय ऑब्जर्विंग सच क्वालिटीज एज डिजाइन एंड इंटेलिजेंस इन दिस वर्ल्ड। छोटी सी चीज देख के बात को समाप्त करेंगे, हो सकता है थोड़ा आपको हेवी लग गया, हेवीयर हो जाए, कि आप एक अच्छे से कपड़े पहन रखे हो, आप करते हो, तो जैसे आप कपड़े को देखते हो अगर आप आपको अच्छा लगा तो आप तारीफ करते हो। जब आप कहते हैं ये कपड़ा बड़ा अच्छा है, ये ड्रेस बड़ा अच्छा है, इनडायरेक्टली आप तारीफ करते हो कि जो मेकर है जिसने बनाया उसने अच्छे ढंग से अच्छा बनाया है, अपने आप थोड़े कपड़ा अच्छा हो जाता है। जब आप कहते हो कि खाना बहुत टेस्टी है, आप खाने की तारीफ नहीं करते हो, ध्यान दीजिएगा, खाना को क्या तारीफ करोगे, खाना कोई सुनता है? आप जब भी खाने की तारीफ करते हो आपका इंटेंशन खाने पर नहीं, खाने वाले पर, जो खाना बनाया उसको तारीफ करते हो। कभी खाने की तारीफ करके देखो कौन खुश हो रहा होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या तारीफ करे, वो कहता है कि आप तारीफ मुझे करते नहीं हो। जैसे वाइफ्स का ये बड़ा बड़ा शिकायत रहता है कि पति आजकल तारीफ करते नहीं है, तो बहुत सारे पति पूछते हैं कि क्या तारीफ करें, अब पुराना हो गया तो सब चीज तो ठीक ठाक है, क्या कितना तारीफ करें। वो जो काउंसिलर होते हैं वो कहते हैं नहीं, करने की चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि रोज देख करके बोलो आप बहुत खूबसूरत हो, दुनिया के सबसे सुंदर आप हो, सबसे सुंदर आप बोलते हो, आपके आंखें ये हिरण की तरह है, आपके कान, ये जरूरी नहीं कि रोज रोज यही सुनाते रहो, ये शुरू शुरू में दो चार बार सुना दिया था ओके। जब आप बोलते हो कि खाना आज अच्छा बना है तब खाने की तारीफ करते हो, पर खुश खाना बनाने वाला ही होता है। जब आप कहते हो कि ये ड्रेस बड़ा अच्छा है, वो ड्रेस खुश नहीं होता है, वो ड्रेस बनाने वाला खुश तो हो नहीं सकता, पास में नहीं है, खुश हो जाता है जो ड्रेस पहन रखा है या पहन रखी है, आपका काम बन जाता है। जब आप कहते हो ड्रेस अच्छा है तो अगर किसी काम से आए वो काम आधा बन जाता है वहीं पर। आप जब कहते हो कि आपका घर बड़ा सुंदर है तो घर में रहने वाला खुश हो जाता है। तो इसका मतलब जब आप तारीफ करते हो वस्तु की, वो इनडायरेक्टली उसको और कहीं जाता, जो जो चेतन होता है, जो कॉन्शियसनेस वाला होता है, उसी को रिजल्ट मिलता है, या तो जो भोगता है या जो बनाता है। बनाने वाला आसपास होता नहीं है, घर बनाने वाला, इसीलिए घर में रहने वाला खुश हो जाता है। खाना बनाने वाला आसपास होता है तो खाना बनाने वाला भी खुश हो जाता है। इसी तरह ये संसार में जो कुछ आप देखते हैं, आपका शरीर को देखिए, कितने टेक्निकली, कितना कितने सोफिस्टिकेटेड वे से ये शरीर बना हुआ है। जब आप सोचते हैं तो कोई ना कोई, ये ईश्वर की क्वालिटीज है, ईश्वर का गुण है, कोई ना कोई होगा जो इतने इस संसार को, आपके शरीर से लेकर के विशाल ब्रह्मांड को, इतने माइनूटली, इतनी बारीकी से, इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड वे से बनाया है। जब आप दुनिया को देखते हो नेचुरली वो ईश्वर को क्रेडिट जाता है, क्योंकि क्रिएशन करने वाला कोई होता है। समय हो चुका है, आगे की चर्चा फिर हम आगे करेंगे, ईश्वर की कैसे, ईश्वर होने की सिद्धि क्या है और बाकी चीजें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।